নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গৌর হরি নিতাই গৌরাঙ্গ গৌর হরি জয় সচ্চিদানন্দন জয় সচ্চিদানন্দন জয় সচ্চিদানন্দন জয় সচ্চিদানন্দন জয় সচ্চিদানন্দন গৌর হরি নদিয়া বিহারি গৌর হরি সচি মাতা প্রাণ ধন গৌর হরি বিষ্ণু প্রিয়া প্রাণ ধন গৌর হরি নিতাই গৌরাঙ্গ 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 গৌর হরি নিতাই গৌরাঙ্গ গৌর হরি গৌরাঙ্গ 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 নিত্যানন্দ 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 নিত্যাই গৌর হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বোল জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয়ষ্ণুপাদ পরমহংস পৌচিকাচার্য অষ্টোত্তর শিষ্য শ্রীমদ্ ডিভাইন গ্রেস শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ কি ইসকন ফাউন্ডার আচার্য জগৎগুরু শ্রী দ্য হোল ওয়ার্ল্ড শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় বিষ্ণুপাদ পরমহংস পৌচিকাচার্য অষ্টোত্তর শিষ্য শ্রীমদ ডিভাইন গ্রেস ভক্তি সিদ্ধান্ত সচিন গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি নামাচার্য শ্রী হরিদাস ঠাকুর কি প্রেম সে কহো শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি শ্রী শ্রী রাধারাধিকা রমন জি কি শ্রী শ্রী কৃষ্ণ বলরাম কি জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি শ্রী শ্রী গৌ নিতাই কি গৌর পূর্ণিমা মহা মহোৎসব কি নিতাই গৌর প্রেম আনন্দে All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanasti Mirandhasya Jnananjana Shlakya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Nama Vancha Kalpatru Vyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नित्यानंद मस्तुभ्यं प्रेमानंद पदायने कलो कलमश नाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दृश्य नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर। हरी बोल। तो हम सब गौड़िया वैष्णवों के लिए आज बहुत ही महान दिन है और धन्यवाद देते हैं मूल्य कृष्ण प्रभु का। बहुत ही प्रेरणात्मक और शिक्षात्मक लेक्चर था। तो अभी मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो श्लोक लिखा है बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सबको? तो ये प्रबोधन सुरेश ठाकुर जी ने एक नाटक लिखा था चैतन्य चंद्रामृत, उसमें से 130 नंबर वर्स है। थोड़ा मुश्किल है, इसको दोहराएंगे नहीं, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ इकट्ठे सब बोल सकते हैं और ये इसको लैवी से हम नहीं जान सकते कौन से मीटर में इसको गाना है। प्रेमा नामा अद प्रेमा नामा अद्भुत अर्थ श्रवण पथ गथा कस्य नाम नाम महिमाना। कोवेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधु ऋषु प्रवेशा। कोवा जानाति राधम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमम। एकश्चैतन्य चंद्र परम कारुण्य सर्वम अविश्चक्र। धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया आप सबने। तो इसका अर्थ ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्याय है उनके आने से पहले कृष्ण प्रेम जैसे अद्भुत शब्द किसी के कानों में प्रवेश नहीं करते थे। श्रवण पाथ गतः प्रेम नाम अद्भुत अर्थ। दूसरा कस्य नाम नाम महिमा ना, और किसी को भी भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान नहीं था। दूसरी लाइन को वेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुर ऋषि प्रवेशा, और कोई भी वृंदावन की महिमा को भी नहीं जानता था। ये हम अप्रोक्सीमेट आपको लगभग अर्थ बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं। कोवा जानाति राधम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमम, और कोई भी राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की माधुर्यता को नहीं समझ पाता था। एक चैतन्य चंद्र परम कारुण्य सर्व अविश्चक्र, ये तो केवल एकमात्र चैतन्य चंद्र के अहेतु की कृपा से इन सब के विषय में मालूम चल रहा है। यानी कि यहां प्रबोधवान सरस्वती ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने चार बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार हमें दिए हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु से पहले उपलब्ध नहीं थे, और ये चार उपहारों के विषय में आज चर्चा करेंगे। ये चार गिफ्ट जो महाप्रभु हमारे लेके आए, पहले बता रहे हैं प्रेम। प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी ने प्रेम के बारे में कुछ बताया नहीं, तो महाप्रभु ने प्रेम के बारे में बताया, प्रेम दिया भी। दूसरा नाम, नाम की महिमा। तीसरा वृंदावन, और चौथा श्रीमती राधा रानी की महिमा। तो ये चार मुख्य उपहार चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिए। कौन कौन से? पहला प्रेम, दूसरा नाम, तीसरा वृंदावन, और चौथा राधा रानी की प्रेम की महिमा। तो ये चार जो उपहार महाप्रभु ने दिए ये बहुत ही महान है और बहुत ही गहरा ये टॉपिक है। और गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का समझ लीजिए पिनाकल, शिरोमणि, टॉप मोस्ट। तो मेरे में इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसके विषय में आपको ज्यादा बता पाऊं, तो मुझे जो इसके लिए प्रेरणा मिली ये टॉपिक आपको देने के लिए, मैंने मुली शोज में चर्चा की थी, तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें वो चर्चा कर रहे थे, और हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु का भी एक लेक्चर सुना था, तो मुख्यतः इसके इस पे इन दो प्रवचनों को सुनकर मैंने ये कुछ बनाया है आपके लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जो उपहार हैं, इसको हम कैसे समझें इतने डीप टॉपिक को। तो भक्त लोग तो मुख्यतः भिखारी होते हैं, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, हम सब भिखारी हैं। तो आज गौरांग महाप्रभु से, जो कि महावदन्या है, भीख मांगते हैं कि हम उनके इन उपहारों की महिमा को समझ पाए। ये भी अपने आप में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम उनके उपहारों को समझ पाए। लेकिन ये जो भीख मांगनी होती है, तो भीख भिखारी के हाथ खाली होने चाहिए, भिखारी के हाथ भरे हो, बढ़िया स्मार्टफोन पकड़ा हो और मर्सिडीज बेंज की गाड़ी की चाबी हो, और भीख मांगेगा तो कैसे मिलेगा। तो हमारे हाथ खाली होने चाहिए, हाथ खाली है। खाली हाथ का मतलब क्या है? एकदम स्वार्थ रहित, मिथ्या अहंकार रहित, मिथ्या प्रेस्टीज कोई झूठी पूजाला प्रतिष्ठा से रहित, सच्चे हृदय से, ईमानदारी से हम प्रार्थना करें कि मैं आपके इस उपहारों की महिमा को समझ सकूं। बद्ध जीव का पूरा जीवन दोगलेपन में, दिखावे में निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं हमारे पास क्या क्या हमें उपहार मिल रहे हैं, इसकी क्या महिमा है, इसका कैसे उपयोग करना है, पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। तो गौरांग महाप्रभु से आज जितने हम हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उनकी हम आप हमारे हृदय में इसकी महिमा को प्रकट कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस उपहारों के बारे में चर्चा करेंगे जो महाप्रभु ने हमें दिया। इसमें कुछ थोड़े से एसोटोरिक टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा बातें ऊपर की होंगी, वो हो सकता है ऊपर से निकल भी जाए, तो थोड़ा सब्र बनाए रखना। एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमें मालूम होना चाहिए कि ये उपहार कितने महान हैं। और दूसरा हम फिर चर्चा करेंगे कि इस उपहारों को, इस गिफ्ट को कैसे हैंडल करना है, हमने दे दिया हाथ में, आगे क्या करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि आज किसका जन्मदिन है? महाप्रभु का। उनको उपहार देना चाहिए, हमें उनको उपहार देना चाहिए है? बोली कमिटमेंट की बात आ गई ना तो देना कि लेना है? देना है। तो कि हम फिर सोच के ये चर्चा करेंगे कि क्या गिफ्ट देना चाहिए गौरांग महाप्रभु को। देंगे गिफ्ट, ठीक है ना? तो पता नहीं कितना समय मिलेगा, कोशिश करते हैं इस करने का। ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी भी चर्चा करते रहे चलती रहेगी। लेट्स सी, आप सब भक्तों के कृपा की याचना करते हुए अपने शुद्धि करने के लिए गौरांग महाप्रभु का मैं स्वार्थ रहित होके पूरे हृदय से गुणगान कर सकूं, आप सब कृपा कीजिए। तो सबसे पहले कि महाप्रभु ने सबसे पहला उपहार क्या दिया हमें? प्रेम। महाप्रभु से पहले कोई प्रेम के बारे में जानता ही नहीं था, वो भी भगवान से प्रेम करना है ना। प्रेम किया जाता अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। लोग भगवान के पास तभी आते थे कि प्रेम बना रहा है घर में, है ना, प्रेमी प्रेमिका तभी आते थे। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ जो आए थे कृष्ण के पास इसीलिए कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बोले कृष्ण की बड़ी गर्लफ्रेंड्स हैं तो एक तो गर्लफ्रेंड दे दो भगवान कई लोग ऐसे होते हैं ना, इस संसार से प्रेम करने के लिए लोग भगवान के पास आते हैं। और भगवान से प्रेम करना है ये तो कोई सोचता भी नहीं था। और दुनिया के किसी भी धार्मिक शास्त्र में भगवान से प्रेम क्या है कुछ नहीं बताया गया था। यहां तक ये क्लियर नहीं है कि भगवान कौन है, तो भगवान से प्रेम करने की बात तो अलग है। और ज्यादा से ज्यादा बाकी धर्मों में भगवान को माता या पिता के रूप में देखा जाता था। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी जो गिफ्ट है श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि बिगनर्स के लिए है, उसी में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ी गिफ्ट ये है कि महाप्रभु हमको ये बता रहे हैं कि भगवान के साथ प्रेमी का भी संबंध हो सकता है, कॉन्जुगल लव में भी भगवान के साथ संबंध हो सकता है, अपने काम को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये पहली बारी भगवान ने बताया, भगवान ने स्वयं बताया आके कि ऐसा भी हो सकता है। एकदम दिमाग आउट ऑफ बॉक्स, एकदम आउट ऑफ बॉक्स है ये। भगवान से तो हम लेते हैं, भगवान तुम्हारे माता है पिता है, नहीं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, कॉन्जुगल मैथुन संबंध भगवान के साथ कोई सोच भी नहीं सकता, और भगवान स्वयं आपके ही बता रहे हैं। मतलब कि संबंधों की परिकाष्ठा तक ले गए, सर्वोत्तम ज्ञान दिया प्रेम के विषय में। और महाप्रभु ने अपने जीवन में दिखाया, महाप्रभु श्रीमती राधारानी के भाव में आए तो वो उस प्रेम का आस्वादन भी कर रहे हैं और प्रेम बांट भी रहे हैं। और जब वो प्रेम बांट रहे हैं तो देख नहीं रहे किसको बांट रहा हूं। भगवान ने गीता में कहते हैं मनुष्य नाम सस्ते सुखशील सिद्धये, कोई हजार हजार लोगों में कोई मुझे जान पाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं कि भाव भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभा, बहुत मुश्किल से भाव भक्ति प्राप्त होती है। दो कारण बताए, एक तो भगवान देना नहीं चाहते, दूसरा साधक भी इतना गंभीर नहीं होता कि आसक्त होकर साधना करे। दोनों तरफ से ही है तो भाव भक्ति तक पहुंचना भी दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। प्रेमा भक्ति की बात तो छोड़ दो, लेकिन महाप्रभु इसको बांट रहे हैं खुले आम सबको। महाप्रभु की हम लीला में देखते हैं मायावादियों को भी दे दी प्रेम, दे दिया। मायावादी जो कृष्णेर अपराधी सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बैठ के उनको प्रेम तक दे दिया, ऐसा प्रेम दे दिया कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुक्तिपाद की जगह भागवतम का एक श्लोक था उसको बोले भक्तिपाद ये होना चाहिए। तो महाप्रभु बोले इतना भी मत मानो, वेदव्यास जी की भाषा को चेंज मत करो। और फिर महाप्रभु एक बार सुबह सुबह गए जगन्नाथपुर मंदिर से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी विश्राम कर रहे थे और उठे ही थे, महाप्रभु उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया और जब सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मुंह में डाल दिया, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। अरे क्या हो गया, प्रसाद तो पाए, प्रसन्न होने क्या रहे? अरे कहां एक मायावादी था शुष्क वैरागी और कहां वो भगवान के प्रसाद को आप आनंद उठा रहे हैं, है ना। तो मायावादियों का भी उद्धार किया, प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 शिष्यों के साथ सबको गौड़िया वैष्णव बना दिया। और जब रूप गोस्वामी ने देखा कि वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती, वाराणसी जो कि मायावादियों का गढ़ है, वहां पे महाप्रभु के साथ प्रकाशानंद सरस्वती और 60,000 सन्यासी बिंदु माधव मंदिर में जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी बोला इससे बड़ा क्या दृश्य हो सकता है। तभी उन्होंने बोला नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो मायावादियों का भी उद्धार किया, जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा, झारखंड के जंगल से गुजरे सबको कृष्ण प्रेम दे दिया सबको। महाप्रभु गायत्री कर रहे थे नदी में, पागल हाथियों को झुंड आ गया, बलभद्र भट्टाचार्य घबरा गए क्या हो गया, महाप्रभु ने कुछ भी नहीं किया, पानी छिड़का, बोले बोलो कृष्णा कृष्णा, हाथी पागल हो गए, पहले तो पागल थे और पागल हो गए, लूटने लगे जमीन पे और कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं, शेर और हिरण आपस में गले भी लग रहे हैं, एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं था कि जब महाप्रभु चले गए तो शेर ने हिरण का लिंगन किया उसको खा गया, ऐसा नहीं। प्रेमा भक्ति जहां आते अविद्या विनाश आते, शेर और किरण के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, सारा द्वेष खत्म, सारा मिथ्या अहंकार खत्म। कमाल है ये महाप्रभु के, देखिए महाप्रभु को दर्शन कर ले छू ले वो कंपन शुरू हो जाता था। मायावादियों को उद्धार कर दिया, पशुओं का उद्धार कर दिया, पेड़ पौधों का उद्धार कर दिया। वृंदावन में गए जो उन्होंने कृष्ण कृष्ण बोला तो पेड़ पौधे बोलने लगे कृष्ण कृष्ण, और महाप्रभु को देखते ही सब पेड़ झुक गए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कैसे पेड़ों की आंखों से आंसू क्या लगे, शहद टपकने लगा पेड़ों से, और जो भी उनके फल फूल थे वो महाप्रभु के चरणों में समर्पित करने लगे, उनके अंदर प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो गए। पापियों का उद्धार किया, जगाई मधाई, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा, जन साधारण का उद्धार कर दिया। कोई महाप्रभु के दर्शन कर लेता, कोई महाप्रभु से कृष्ण कृष्ण सुन लेता, उसी के अंदर सारी शक्ति का संचार हो जाता, कोई दूसरा व्यक्ति उसके दर्शन करता उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाता, इस तरह पूरा का पूरा गांव कृष्ण प्रेम में डूब जाता था। ये महाप्रभु ने सबको प्रेम बांटा और खुद भी उसका आस्वादन किया, तो ये महाप्रभु का विशेष उपहार था। और महाप्रभु ने ये जो उपहार भी दिया साथ में दिखाया कि केवल वो कृष्ण से प्रेम भी नहीं कर रहे, भक्तों से भी बहुत प्रेम करते थे, है ना। जैसे हम जानते हैं बहुत सी कथाएं हैं, समय नहीं इसमें, तो काफी पूरी चैतन्य चरितमृत भक्तों के साथ प्रेम में संबंध से ही बनी हुई है। और जैसे सनातन गोस्वामी जी आ रहे थे वृंदावन, झारखंड के जंगलों से गुजरे तो उनको वूपिंग कफ हो गया, सारे शरीर पे फोड़े फुंसी और पस निकलते थे। सनातन गोस्वामी बोले जीवन खराब है, इसमें क्या सेवा करूंगा, सुसाइड कर लूंगा, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के सामने अपना शरीर दे दूंगा। महाप्रभु को मालूम चल गया, महाप्रभु जब भी उनको देखते थे, आप सोचिए सारे शरीर से खून और पस निकल रहा है, महाप्रभु उसको आलिंगन कर लेते थे। सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता था, ठीक मेरा आलिंगन महाप्रभु कर रहे हैं। तो एक बार लंबी कथा है, शॉर्ट में बताते हैं कि बाद में जब महाप्रभु ने बोला तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे को मैं आलिंगन करके मैं दूषित हो रहा हूं, मुझे तो इसमें से सुगंध आती है, कौन से सुगंध? चतुष्म के। चतुष्म क्या होता है? इसमें कपूर, चंदन, अगरु और कस्तूरी। आप देखिए भक्तों के शरीर से जो पस और खून निकल रहा है उसको महाप्रभु क्या देख रहे हैं? कस्तूरी की सुगंध है। ये तो चंदन का लेप है, अगरु है और साथ में कपूर। ये महाप्रभु का प्रेम होता था। महाप्रभु के एक भक्त थे जगदानंद पंडित, उनके साथ बहुत बढ़िया प्रेम का उनका आदान प्रदान होता था। जगदानंद पंडित कृष्ण लीला में सत्यभामा थे। तो एक बार जब महाप्रभु गंभीरा में विश्राम करते थे तो महाप्रभु बहुत तपस्या करते थे। गंभीरा आपका अगर आप कहीं हो गए, कितने भक्त लोग गंभीरा गए हैं? तो गंभीरा में महाप्रभु कैसे विश्राम करते थे? अपने पृथ्वी पर केले के पेड़ का जो छाल होती है, केले का पेड़ की छाल देखिए कितनी सख्त होती है, उसको बिछाकर उस पे सोते थे। और वो चुभती थी महाप्रभु को और महाप्रभु के शरीर में खून भी आ जाता था, तो भक्तों से देखा नहीं जाता था। तो जगदानंद पंडित तो बिल्कुल नहीं देख सकते थे। जगदानंद पंडित ने पहले महाप्रभु के लिए बहुत सुगंधित तेल लेके आए थे नवद्वीप से। बोला महाप्रभु लगाओ। महाप्रभु बोला इसको मैं लगा लूंगा तो परफ्यूम की फैक्ट्री बन जाऊंगा। मैं इसको नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओ। महाप्रभु बोला इससे हम जगन्नाथ जी मंदिर में दिए जला देंगे। जगन्नाथ पंडित ये सुना कि मैं इतनी दूर से लेके आया हूँ इतने मटके आपके लिए। बोले जगन्नाथ जी के मंदिर दिए जलाओगे? बोले हाँ। उनके सामने उठाया और फेंक दिया से पड़ के, और फिर उसके बाद बिना चले गए, दरवाजा बंद कर दिया और कोई उपवास पे चले गए। तो ये उनका स्वभाव था। तो जगन्नाथ पंडित ने सोचा अब मैं जाऊंगा बोलूंगा गद्दे पे सो तो सोएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बढ़िया सा मुलायम सा कपड़ा लिया, उसमें बढ़िया बढ़िया एक मुलायम पेड़ की सुंदर घास डाली, उसको बढ़िया बढ़िया सा एक मैट बना दिया, जैसे कहते हैं गद्दा बना दिया, और स्वरूप दामोदर को दिया कि तुम ही बिछाना, मेरा नाम मत लेना कुछ। स्वरूप दामोदर ने उसको बिछा दिया। महाप्रभु आए, बोले क्या है, इस पे सोऊंगा मैं, ये जरूर जगदानंद पंडित ने बिछाऊंगा। इसको उठाओ और फेंक दो। जगदानंद पंडित बोले फिर हो गया। तो ऐसे बहुत लविंग ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलती है महाप्रभु और भक्तों के बीच में। तो महाप्रभु ने अपने व्यवहार से दिखाया कृष्ण से कैसे प्रेम करना है, भक्तों से कैसे प्रेम करना है, और महाप्रभु ने बिना देखे सबको प्रेम बांटा। ये महाप्रभु का विशेष उपहार था हम सबके लिए। दूसरा हम देखते हैं ये जो प्रेम है वास्तव में ये प्रेम क्या है, क्षमा करें, ये प्रेम है, कोई गला गदगद नहीं हो रहा, ऐसा मत सोचे कि एक्सटेसी आ रही, कोई प्रेम के लक्षण नहीं आए। तो कफ के लक्षण है, कफ के। तो उन्होंने ये प्रेम वास्तव में क्या है, व्रज प्रेम, कि वृंदावन का प्रेम क्या आता है, उन्नत उज्जवल रस। तो ये उन्नत उज्जवल रस क्या है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। दूसरा उपहार क्या दिया महाप्रभु ने, नाम। हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो नाम हम सब जानते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। महाप्रभु ने जो नाम दिया, वैसे तो कलयुग में हमेशा ही नाम की महिमा बताई गई है, ऐसा नहीं है कि इसी कलयुग में नाम की महिमा है, हर कलयुग में नाम की महिमा रहती है। लेकिन ये जो महाप्रभु का अवतार है ये बहुत विशेष अवतार है। महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं आदि लीला के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में, कृष्णदास कविराज जी लिख रहे हैं, क्षमा करें, योग धर्म प्रवर्तन है अंश हेते आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। यानी कि महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट होते हैं हमें व्रज प्रेम देने के लिए। ये जो नाम है इसका प्रेम से बहुत गहरा संबंध है, ये चर्चा करेंगे। इससे दूसरे कलयुग में भी नाम था लेकिन वो प्रेम प्रदान करता नहीं था। इससे पहले के कलयुगों में भी महाप्रभु की जगह आते थे गौर नारायण, उनको गौर नारायण कहते थे, वो भी नाम का प्रचार करते थे, लेकिन वो जीवों को वैकुंठ तक। लेकिन ये जो प्रेम है ये व्रज प्रेम, वृंदावन का प्रेम दे रहा है। वृंदावन के प्रेम और व्रज वैकुंठ के जाने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ऐसी क्या खासियत आपको, कुछ डिफरेंस लग रहा है इस महाप्रभु की, कोई स्पेशलिटी लग रही है आपको कि ब्रज का प्रेम मिल रहा है, कोई एक्साइटमेंट हो रहा है कुछ है? ये हमारे को तो फर्क नहीं पड़ता, हमने रहना यहीं पे है, हमारे सामने कितने ब्रह्मा जी आए कितने इंद्र आए सब चले गए, हमने ना कैसे किसी कंपनी में जाते हैं, नया नया ग्रेजुएट इंजीनियर जाता है ट्रेनी, बोले आप तुम्हारे ऐसे कितने आते हैं चले जाते हैं, ये जो बैठा है जनरल, ये भी पहले ग्रेजुएट ट्रेनी था, ये सब आते हैं जाते हैं, मैं तो वहीं का वहीं सुपरवाइजर हूँ, है ना, फोरमैन। तो वही हमारी हालत है, कई ब्रह्मा आए, कई मनु आए, कई इंद्र आए, चंद्र आए, वरुण आए, कितनी सरकार पलटते देखी हमने न्यूवर्स के, लेकिन हम वहीं के वहीं स्थाई हैं। तो कोई फर्क लग रहा है वैकुंठ जाने में और व्रज पान जाने में, कोई अंतर लग रहा है किसी को? नहीं, अगर यही अंतर नहीं है तो फिर हम महिमा समझ नहीं पाएंगे, हम तभी तो गिफ्ट की समझ नहीं पा रहे, क्या गिफ्ट है भाई, क्या है पहले दिन से ही मुंह में डाल देते हैं, बोलो कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, हाँ कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, पता नहीं चलता जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर बोले माला पकड़ो इसे क्या पड़े, वृंदावन जाओगे, अच्छा वृंदावन चला जाऊंगा कोई बात नहीं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए बोला था कि आज खूब हृदय से प्रार्थना करें महाप्रभु से कि आपका जो विशेष अवतार है, जो आप उपहार लेके आए हैं, मैं समझूं तो सही आप मुझे क्या उपहार दे रहे हैं। अब छोटे बच्चे को 5 लाख का चेक काट के दे दिया पिताजी ने, ले वो क्या करेगा, वो बाहर मूंगफली वाला जाएगा, इस पर डाल दे थोड़ा मूंगफली और खाएगा आराम से भेलपुरी फेंक देगा, यही हमारी हालत है। बस हरी नाम भी है, प्रेम है, सब कुछ है हमारे पास, वृंदावन है, राधा रानी जी, सब कुछ है, लेकिन हम जान नहीं रहे क्या है ना। व्रज के प्रेम की खासियत है, व्रज के प्रेम में क्या है कि हम भगवान को ऐसे देख पाएंगे, भगवान से खेल सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, साखे रस है, भगवान के कंधे पे चढ़ जाएंगे, भगवान को हरा देंगे कुश्ती में, उसको गाली भी दे सकते हैं, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान बोर हो गए हैं पुरुष शक्ति से, हर कोई आरती कर रहा है, हर कोई गुणगान कर रहा है, भगवान को अच्छा नहीं लगता ये, है ना, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है हमारा कोई गुणगान करे, हमारे से कोई ऐसा व्यवहार करे, हमें हराए, हमें गाली दे, हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भगवान को बहुत आनंद आता है ब्रज प्रेम। भगवान एक्चुअली वृंदावन में भगवान भगवान नहीं है, ग्वालवाल है, और वैकुंठ में वो भगवान है, तो भगवान बिल्कुल आनंद में, भगवान का भी आनंद बढ़ता है, तो वो व्रज का आनंद देने के लिए वो इस नाम से हमें प्राप्त हो सकता है, ये जो महाप्रभु और बाकी जो योगों के गौरव नारायण है उनमें ये अंतर है, इस नाम में और बाकी कलयुग के नाम में ये अंतर है। और साथ में जी गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि नाम दो प्रकार के होते हैं, कृष्ण नाम का कीर्तन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक नाम कहलाता है केवल नाम और एक नाम कहलाता है स्नेह युक्त नाम। केवल नाम मतलब साधारण नाम हो गया, और स्नेह युक्त नाम मतलब कि स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक, उसमें प्रेम है। जैसा कि हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी के साथ माया देवी आई थी हरिदास ठाकुर जी का टेस्ट करने के लिए, और हरिदास ठाकुर जी ने उनको 3 दिन तक रोका, ठहरिए जरा मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन जरा मुझे जब पूरा करने दीजिए। और धीरे धीरे हम जानते हैं कि कैसे माया देवी भी भगवान की भक्त बन गई। तो वो माया देवी फिर क्या बोलती हैं? माया देवी कहते हैं, चैतन्य अवतारे वहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमा भाषे पृथ्वी हैला धन्या, कि अब तो पूरी पृथ्वी में भगवान के प्रेम की बाढ़ आई है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण, और सभी जीव इस बाढ़ में तैर रहे हैं, और पूरा विश्व भगवान के प्रति बहुत धन्य, उनको धन्यवाद दे रहा है। एक वन्या ये ना भाषे से जीव चार, कोटि कल्प कभूतार ना ही कनिस्तार, जो भी इस बाढ़ में नहीं तैरेगा उसको धिक्कार है, पूरा का पूरा विश्व बाढ़ में डूब रहा है, जो इस बाढ़ में नहीं करे डूबेगा उसको धिक्कार है ना। कोटि कल्प कबूतार ना ही कर निस्तार, ऐसे जीव का तो कई कई करोड़ों कल्पों तक उद्धार हो ही नहीं सकता, इतने बढ़िया अवसर को जो गवा देगा उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता, माया देवी कह रही है। और इसके बाद माया देवी कहती है कि इससे पहले मेरे पति शिव जी ने मुझे राम नाम दिया था, आप मुझे कृष्ण नाम दीजिए, राम नाम तो मुझे मुक्त कर देगा, कृष्ण नाम मुझे प्रेम देगा। तो कवि कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, आप में से कृष्णदास कवि जी कह रहे हैं, उपदेश पाया माया चलीला हया प्रीत, ए सब कथा ते करुणा जन्मे प्रतीत। कि इस तरह से हरिदास ठाकुर की तरह शिक्षा प्राप्त करके माया देवी बहुत खुशी खुशी चली गई। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इस कथा में विश्वास नहीं होगा। यहां भी काफी लोग सुन रहे होंगे, बोले क्या पहली बार ही सुन रहा हूं, दुर्गा माता हरिदास ठाकुर के पास गई थी, पता है यही सुनते हैं, इस कौन में ही सुन रहे हम तो है ना, ऐसा पता नहीं हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो कृष्णदास जी कवराज जी कहते हैं ठीक है, आप में से कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूं, ये बात ही बड़ी अजीब सी है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको विश्वास क्यों होना चाहिए। ये बात है अजीब सी, लेकिन और आपको अद्भुत बातें सुनाता हूं। वो बोल रहे हैं, चैतन्य अवतारे कृष्ण प्रेमा लुब्ध हैया, ब्रह्मा शिव शनक आदि पृथ्वी ते जनमैया। बोले माया देवी की तो बात छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं इसके लिए इतना लोग लोभी हो गए हैं। कौन कौन लोभी हो गए हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी और शनक आदि ऋषि, वो भी आ गए हैं पृथ्वी पर, अलग अलग देश में घूम रहे हैं कि शायद हमें भी कुछ प्रेम मिल जाए। हाँ समझे, जो प्रेम ब्रह्मा जी और शिव जी को नहीं मिल रहा वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। जब निमाई पंडित थे नवद्वीप में, एक बार जो कुत्ता उठा के ले आए पिल्ला सच्ची माता के घर में, सच्ची माता ने कहा धिक्कार है, छी 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 कुत्ता घर में आ गया। ये था उस 500 साल पहले की बात। आजकल तो लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमारा यहाँ डोबरमैन है, क्या क्या है ना। सच्ची माता ने बोला ओ क्या कर दिया, कुत्ता थोड़ी लाते हैं घर में, गाय होती है घर में, कुत्ता क्यों लाया। बोले नहीं नहीं ये रहेगा यहीं पे। उन्हें माई ने जिद करने लगा, बोला सच्ची माता ने बोला गंगा में स्नान कर गया, चल चल। अपने भाई सच्ची माता ने पिल्ले को छोड़ दिया, चलो। जब निमाई वापस आई बोले कहाँ है वो, कहाँ है, तो रोने लगे जोर जोर से, बोले चला गया अपने यहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। तो निमाई ढूंढते ढूंढते उसको गए नदिया के बाजार में, और नदिया के बाजार में देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। बड़ी भीड़ क्यों लगी हुई है? निमाई अंदर घुसे तो वो कुत्ता अपने दो पाओं पे खड़े होके, हाथ खड़े करके, आंखों से अश्रु धारा बल्कि हरी 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 कह रहा है, और सबके सामने एक विमान आता है और कुत्ते को लेकर जाता है, और कुत्ता हरी हरी करते हुए चला जाता है। ये थे निमाई पंडित। जब ये सब देखा तो ब्रह्मा जी और शिव जी चर्चा कर रहे हैं, ये कुत्ता हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, इसको कृष्ण प्रेम मिल गया हमें नहीं मिला। वो इसलिए कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी और शनक आदि भी पृथ्वी पर आते हैं, मनुष्य के रूप में घूमते हैं कि शायद हमें मिल जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं प्रेम लेकर, प्रेम नाम लेकर। फिर आगे बता रहे हैं, उनको भी छोड़ो, नारद जी प्रहलाद यहां पर मनुष्य के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण का नाम सबके साथ लेते हैं, नाचते हैं और प्रेम की बाढ़ में डूब जाते हैं। नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शनक आदि को भी छोड़ो, लक्ष्मी जी भी आ जाती हैं। लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेम लुब्ध हैया, नाम प्रेम आस्वादेला मनुष्य जन्मैया। अरे भैया लक्ष्मी जी की बात ही छोड़ो, अन्य के कथा आपने व्रजेंद्र नंदन, अवतारी करण प्रेम रस आस्वादन। कौन आ गया? स्वयं व्रजेंद्र नंदन आ जाते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन कृष्ण द सन ऑफ नंद महाराज स्वयं आते हैं इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए। अच्छा नहीं लगा आपको सुन के? देखिए क्या बात है, मतलब कि स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, शनक आदि, लक्ष्मी जी और स्वयं कृष्ण आते हैं। ये इतना विशेष कलयुग है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं प्रेम नाम लेकर। तो इसमें ऐसी कौन सी हैरानी की बात है कि जो माया देवी, जो कि कृष्ण की मेड सर्वेंट है, जब कृष्ण स्वयं आ गए, कृष्ण की मेड सर्वेंट है, वो हरिदास ठाकुर से प्रेम की भीख मांग रही है। इसमें कौन सी हैरानी की बात है? विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ, विश्वास हो गया। तो कोई बात सकता है कि ये प्रेम नाम क्या है? नाम सुना था, ये नाम क्या, कि प्रेम क्यों लगा दिया आपने? प्रेम शब्द इतना चीप है क्या, प्रेम नाम लगा दिया? तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। नाम प्रेम है हमारे बीच में। प्रेम नाम क्या है? तो प्रेम नाम क्या है इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं, और यहाँ थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा गहरा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी बात थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। और चौथे अध्याय में बता रहे हैं, सही द्वारे आचांडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया, उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया इन कलयुगों से पहले, अब ध्यान पूर्वक सुनिए, थोड़ा ध्यान से, नींद आ रही हो तो खड़े हो जाना, क्योंकि सब्जेक्ट थ्योरेटिकली समझ जाए तब हम महाप्रभु के गिफ्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले के कलयुग में नाम अलग होता था, प्रेम अलग होता था, और महाप्रभु ने क्या किया नाम और प्रेम को मिला दिया। क्या कर दिया उन्होंने, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसार है, इन दोनों को जोड़कर पूरे संसार पे इसको एक कर दिया, नाम प्रेम कर दिया, है ना, प्रेम नाम। तो क्यों किया, ये प्रेम नाम क्या है, है ना, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा महाप्रभु के विषय में और गहराई से जाना पड़ेगा कि महाप्रभु कौन है। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। महाप्रभु में दो विरोधी तत्व एक साथ हैं, भक्त और भगवान। भगवान कृष्ण जो है प्रीति के विषय हैं, और राधा रानी क्या है, आश्रय है ना। आश्रय मतलब भक्त के हृदय में प्रेम होता है, और विषय मतलब जिसको प्रेम किया जाता है। किसको प्रेम किया जा रहा है, कृष्ण को। कौन कर रही है, राधा रानी। एक आश्रय है, एक विषय है, एक भक्त है, एक भगवान है, दोनों इकट्ठे कंबाइंड। बोले श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, यानी कि राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन एट द सेम टाइम इसी समय हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है राधा रानी के भाव में, जो कि राधा रानी कृष्ण से विरह अनुभव कर रही है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राधा कृष्ण कंबाइंड, और इसी तरह से राधा कृष्ण कंबाइंड है। किस तरह से कंबाइंड है कि कृष्ण राधा रानी के विरह भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण है राधा रानी के उस भाव में जिसमें राधा रानी को कृष्ण का विरह हो रहा है, तो एक तरह से हम कंबाइंड भी कर रहे हैं, और एक तरफ से राधा रानी को कृष्ण का विरह भी हो रहा है। तो बड़ा कंट्राडिक्टरी है, ये है क्या। इसको और समझने के लिए हम लोग थोड़ा और गहराई में जाएंगे कि ये जो प्रेम है इसके दो रूप होते हैं। क्या क्या रूप होते हैं दो, हाँ, एक विरह और एक मिलन संबंध। चार प्रकार के विरह बताए गए हैं उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी की तरह के द्वारा। तो पहला विलय होता है पूर्वराग। पूर्वराग का मतलब कि प्रेम और प्रेमिका को मिलने से पहले ही एक्साइटमेंट है, मिले नहीं है अभी लेकिन मिलने से पहले। दूसरा होता है मान, जब राधा रानी कृष्ण से मान पका जाती है। मान हेतु भी हो सकता है, अहेतु भी हो सकता है, कि बिना किसी कारण के कई बार मान राधा रानी रासलीला से गायब हो जाते थे, कृष्ण को विरह है या कृष्ण गायब हो गए, तो ये मान राधा रानी का विशेष कर, क्षमा करें। तीसरा है प्रेम वैचित्र। प्रेम वैचित्र में क्या है कि राधा कृष्ण इकट्ठे हैं लेकिन फिर भी राधा रानी को हो रहा है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। बड़ा अजीब सी बात है, जैसे प्रेम सरोवर, आप जानते हैं प्रेम सरोवर, बरसाना के पास एक जगह है प्रेम सरोवर, राधा और कृष्ण इकट्ठे बैठे थे तभी वहां पर एक भमरा आता है, और भमरा क्या करता है, भमरा ने राधा रानी के कमल नयनों को देखा तो उसने सोचा एक कमल है इससे मैं अमृत चखूंगा, तो राधा रानी की आंखों के पास आ रहा था, राधा रानी ने उसको हाथ से दूर किया। जब भवन ने राधा रानी के हाथ को देखा तो हाथ भी कमल की तरह लगा, बोले यही कमल है, यहां से मैं अमृत लेता हूं। फिर राधा ने उसको बोल के दूर किया, दूर हो जाओ। जब बोला, राधा रानी ने अपना मुख खोला तो कमल मुख खोला, उसे जो अमृत निकला, भवन ने बोला अरे ये कितना सुंदर अमृत है, इसका चक्रा जाता है। तो भमरा तो आकर्षित ही हुआ जा रहा था, उन्मत्त होता जा रहा था। तो वहीं पर उस समय भगवान के प्रेम नर सखा जो है मधुमंगल होते हैं, बोले मैं अभी इस मधुसूदन को हटाता हूं। तो मधुसूदन का अर्थ है जो मधु के पीछे भाग रहा हो, और मधु किसका नाम, मधुसूदन किसका नाम है, कृष्ण का। जब मधुमंगल ने बोला कि मैं मधुसूदन को हटाता हूं, राधा रानी ने सोचा कि ये कृष्ण को हटा रहे हैं, यानी कि कृष्ण मुझसे दूर चले जाएंगे। ये सोचते ही राधा रानी से आंखों से अश्रुधारा बहने शुरू हो जाती है, और इतने अश्रु बहते हैं, इतने अश्रु बहते हैं कि वो सरोवर बन जाता है। यह है प्रेम सरोवर। तो जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी का ये प्रेम देखा, मैं इसके साथ हूं और इसके लग रहा कि मैं चला गया हूं, कितनी पागलपन है। तो भगवान ने कहा जब मैं इसको साथ होते हुए इसको विरह हो रहा है, इसका लव जब मैं दूर चला जाऊंगा तो मिलन हो जाएगा। समझे? साथ में हूं तो उनको लग रहा मैं चला गया, जब मैं चला जाऊंगा दूर तो उनको लगेगा कि मैं साथ में हूं। तो ये प्रेम है चित्र, प्रेमी के होते हुए भी साथ में उनको लग रहा है कि वो चले गए। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? है थ्रेटिकल है वैसे हमारे लिए, तो हमारे को तो कुछ। और चौथा है प्रवास। प्रवास का मतलब जब प्रेमी प्रेमिका से दूर हो जाता है, फिजिकली दूर हो गया। ये प्रवास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कहलाता है दूर, एक कहलाता है सुदूर। दूर का अर्थ होता है जब भगवान सुबह सुबह गायें चराने जाते थे और शाम को वापस आते थे, चार पांच घंटे के लिए गोपियां भगवान को देख नहीं पा रही कृष्ण को, तो बड़ा विरह होता था। और सुदूर का मतलब है कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए बहुत लंबे समय के बाद, तो ये सुदूर प्रवास कहलाता है। ठीक है, कितने प्रकार के विरह थे? पहला किसको याद है? वेरी गुड। दूसरा मान। तीसरा, चौथा बस आपको प्रेम मिल जाएगा। वेरी गुड। और सुनिए, उत्साह बढ़ाया आप सबका। तो जो सुदूर प्रवास के बाद जो मिलन होता है वो सबसे ज्यादा प्रगाढ़ होता है। सुदूर प्रवास के बाद जो मिलन होगा, संबंध होगा, वो सबसे ज्यादा इंटेंस होगा। तो ये इंटेंस मिलन होता था जैसे कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों ने, राधा रानी ने कृष्ण को देखा कि वो आए हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में। तो ये जो मिलन है इसमें बड़ी मिक्सचर होता था फीलिंग का। राधा रानी को लग रहा कि कृष्ण हैं भी और नहीं भी हैं, तो सी लेकिन वो वाले कृष्ण नहीं है जो वृंदावन वाले हैं। तो ये जो मिलन इतना इंटेंस था और इसमें इतने तरह तरह के इमोशंस थे, उस इमोशंस को कहते हैं मादनाख्या महाभाव। इसमें मिलन भी है और इसमें विरह भी है। इस मादनाख्या महाभाव का आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा रानी के इस मादनाख्या महाभाव को चुराकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, इसका आस्वादन करते हैं और इसको बांटते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। मतलब कि जो सुदूर प्रवास था, यानी कि भगवान जब द्वारका से आते हैं कुरुक्षेत्र में और व्रजवासी भी वृंदावन से आते हैं कुरुक्षेत्र में, बहुत लंबे समय के बाद मिले तो बहुत वो इंटेंस था। और फिर राधा रानी के अंदर तरह तरह के इमोशंस उठ रहे थे कि कृष्ण हैं भी, ये वाले कृष्ण हैं लेकिन द्वारकाधीश है, ये वजेंद्र नंदन नहीं है। तो मिलन भी है और उसमें विरह भी है। तो ये उच्चतम भाव बताया गया है मादनाख्या, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ये सब चर्चा करनी इसलिए जरूरी है ताकि हमें मालूम चले हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत कितना गहरा है। हम कहते हैं चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग है, ये लोग तो सेंटिमेंटल है, इनको कुछ आता नहीं, ऐसे दौड़ते भागते रहते हैं, है ना। कई लोग हमें अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं एक आइटम की तरह, है ना, कि नाच गा के रौनक लगा दो, तो वो हम रौनक लगा देंगे लेकिन रौनक के पीछे कितनी बड़ी वो बात है, सिद्धांत है। जो हम हरि नाम लेते हैं उसके पीछे कितनी गहराई है, अभी हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को मेरी बातें थ्योरेटिकल लग रही होंगी, बाय द एंड ऑफ सेशन आपको लगे प्रैक्टिकल थे, ये हम प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुन लीजिए प्लीज। तो था ये है मादनाख्या महाभाव, ये टॉप मोस्ट है। और जो सुदूर प्रवास है इसमें रूप गोस्वामी जी ने इसका और विश्लेषण किया है। इसमें जब राधा रानी का विरह है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी 10 दशाएं बताई हैं और बहुत गहरी दशाएं। उसके ऊपर एक अलग अलग से सेशन हो सकता है। जब हम लोग जगन्नाथपुरी के कैंप में गए थे तो चर्चा की थी, बहुत गहरा सब्जेक्ट है उसमें, कि कैसे राधा रानी को ज्वर हो जाता है और कैसे राधा रानी का शरीर पूरा एकदम मलिन हो जाता है, कैसे उनको चिंताएं होती हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और इसकी अंतिम स्थिति है मृत्यु, कि राधा रानी बिल्कुल मृत्यु शैया पर आ गई हैं। और ललिता सखी ने चिट्ठी भेजी कृष्ण को, अब राधा रानी जाने वाली हैं, मैंने देख लिया है उनके नाखों के आगे मैंने कपास रखा, वो हिल नहीं रहा, लास्ट स्टेज है, अब वो जाने वाली है बस। मतलब कि राधा रानी को इतना विरह, इतना प्रगाढ़ विरह। ये है प्रेम। ये ब्रजवासियों का प्रेम हम जान नहीं सकते। जब कृष्ण द्वारका में थे तो उनको मालूम चलता था कि जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए हैं, यशोदा माता जी ने अपनी रसोई में कुछ बनाया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है यशोदा माता जी ने। ये होता है प्रेम। और ये बताया कि यशोदा माता हमेशा एक नहर के साथ बैठी रहती है और उस नहर में खूब पानी बह रहा है। तो बताऊं वो नहर क्या है? यशोदा माता जी के आंसू हैं। ये स्थिति होती थी ब्रजवासियों की। मतलब कि कृष्ण के बिना जीवन नहीं है। शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये था ब्रजवासियों का जीवन। तो हम समझ सकते हैं कि क्या विरह होता है, यू नो। तो ये सुदूर प्रवास की दसवीं दशा थी। राधा रानी ऑलमोस्ट मृत्यु के उस पे है। तो राधा रानी अपने सखियों को बोला कि अब मैं शरीर जाने वाला है तो मुझे यमुना के तट पे ले जाओ। यमुना राधा रानी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो काले रंग की है। और बोले कि कदम के वृक्ष के नीचे मुझे रखना और यमुना की मिट्टी का लेप मेरे पूरे शरीर पे कर देना और मेरे शरीर पे यमुना की मिट्टी से श्याम श्याम लिखना और उसके ऊपर तुलसी मंजरी रख देना और आप सब मिलकर कीर्तन करना हरी 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 हरी। ये राधा रानी की इच्छा है और सखियों ने ऐसा ही किया। सखियों और मंजरियों ने जब कृष्ण राधा रानी के इस प्रेम की इस अवस्था को देखते हैं तो कृष्ण गदगद हो जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, जैसे भागवत में दशम स्कंद में आता है, रासलीला के बाद कृष्ण गोपियों को बोलते हैं, ना परे हम, मैं आपका ऋण नहीं चुकता सकता। मेरे पास योग्यता ही नहीं है कि मैं आपका ऋण चुकता सकूं, क्योंकि आपके हृदय में जो मेरे लिए प्रेम है, मेरे हृदय में आपको मुझसे कहीं बड़ा है। और भगवान देखते हैं कि जो राधा रानी का एक्सटेसी है, जो उनका आनंद है, उनके आनंद से लाखों गुणा ज्यादा है, लाखों गुणा ज्यादा है राधा रानी का आनंद कृष्ण के आनंद से। भक्त का आनंद भगवान के आनंद से लाखों गुणा ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि बाकी दुनिया को मुझसे कुछ चाहिए, ये यथापम प्रपद्यन्ते, मैं उनको कुछ दे सकता हूं, उन्होंने कुछ दिया मैंने उनको कुछ दिया, लेकिन मैं तो आपको कुछ दे ही नहीं सकता और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी योग्यता ही नहीं है। हैं? जो आपका ये भजन है यही आपका क्रेडिट है, यही आपकी महिमा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझे? तो भगवान अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये यथावाम प्रपद्यन्ते, जैसे आप मेरी शरण लोगे वैसे मैं आपका भजन करूंगा। भगवान बोले नहीं, गोपियों के साथ मैं नहीं कर सकता, विशेषकर राधा रानी के साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो भगवान बहुत इंडेप्टेड, बहुत ऑब्लाइज महसूस कर रहे कि मैं कैसे इनका ऋण चुकता हूं। और ये जो गोपियों और सखियों का भजन है, राधा रानी अंतिम अवस्था में है और सब लोग मंजरी रख के उसके हरी हरी कर रहे हैं, इसको बोला गया है प्रेम नाम संकीर्तन। ये है प्रेम नाम संकीर्तन, यो कि राधा रानी के इस विरह को दूर करने के लिए है। इसको प्रेम नाम संकीर्तन बोला गया है। यानी कि जो हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये वास्तव में ये सखी और मंजिलों के द्वारा बोला जा रहा है राधा रानी के विरह को दूर करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। ये इस प्रेम नाम संकीर्तन के पीछे की फिलॉसफी है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो इस, अब भगवान ने गोपियों का इस ऋण को चुकताना है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे पास तो योग्यता नहीं है। तो अगर समझ लो हमारे पास बहुत ज्यादा ऋण चढ़ जाए, है ना, हमने बहुत ज्यादा लोगों से मार्केट से पैसा ले लिया और हमें देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा हमें? ऋण लेना पड़ेगा कहीं और से, लोन लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, है ना। तो कृष्ण बोला मैं बैंक के पास जाता हूँ, है ना। तो कौन से बैंक के पास गए कृष्ण? कुबेर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ कुबेर नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ व्रज वृंदावन, है ना, यानी राधा रानी के पास गए कि मुझे आप कुछ अपना
प्रेम दो
जिससे कि मैं आपको वापस कुछ कर सकूं, मैं कुछ आपको पे बैक कर सकूं। तो बोले नहीं, ये तो मिलेगा नहीं आपको, आपके पास गिरवी रखवाने को चाहिए नहीं, आप ऑलरेडी इतने ज्यादा गहरे लॉस में हो, आपकी हालत तो बहुत खराब है। तो बैंक ने मना कर दिया। तो फिर जब बैंक भी मना कर दे और चारों तरफ से फोन आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट देनी है, तो क्या करता है व्यक्ति? चोरी करनी पड़ेगी, डकैती करनी पड़ेगी। तो वही किया भगवान ने। भगवान को जब भाव नहीं मिला राधा रानी का, तो बताते हैं आचार्यगण कि कृष्ण जबरदस्ती राधा रानी के हृदय में घुस गए और वहां से महाभाव चुरा के भाग गए। देखो ये भगवान, अभी तक माखन तो चुराते हैं, भगवान चोरी हुए आ जाए तो बस कौन पकड़ सकता है भगवान को। तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी के महाभाव को चुरा लिया, जैसे कोई डकैत बैंक का लॉकर तोड़ के सारा धन चुरा लेगा। क्योंकि कृष्ण के ऊपर बहुत प्रेशर है, कृष्ण बहुत ऋणी महसूस कर रहे हैं कि मुझे गोपियों के ऋण को चुकताना है, तो इसलिए उन्होंने लूट लिया और भागे। और इसलिए जब भागे तो राधा रानी पीछे पीछे भागे। वो राधा रानी जो पीछे भाग रही है वो कौन है? गदाधर पंडित। और इस ढंग से कृष्ण ने अपने साथियों को ले लिया, जो ये सारे पंच तत्व हैं। इन्होंने क्या किया फिर? ये राधा रानी के जो प्रेम है जो लेके आ रहे हैं, साथ साथ आस्वादन भी कर रहे हैं और ये चोरी का माला साथ साथ बांटते भी जा रहे हैं। और ये चोरी का माला फिर थोड़ी देख रहे हैं, आप जाओ जामा मस्जिद में चोरी का माल मिलता है, आपको बढ़िया लैपटॉप कंप्यूटर मिल जाएगा ना 2-3 हजार में। तो सब चोरी का माल है और सब बांट रहे हैं, ले जाओ जो भी ले जाओ। तो इस ढंग से ये कृष्ण का भाव है कि उन्होंने राधा रानी के भाव को चुराया, इसका आस्वादन किया और इसको बांटा। तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो ये हरिनाम संकीर्तन है, ये प्रेम नाम संकीर्तन है, बहुत विशेष है। इसमें एक साथ तीन चीजें हैं कि भगवान इसको दे भी रहे हैं, भगवान इसका आस्वादन भी कर रहे हैं और भगवान के द्वारा और इसके द्वारा भगवान को पूजा भी जा रहा है ना। हम इसमें भक्ति भी है, भक्त भी और भगवान है, तीनों एक साथ है। इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तो उनकी पूजा भी हो रही है जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भगवान इसको रैलिश भी कर रहे हैं, राधा रानी का महाभाव है, और साथ में भगवान इसको बांट भी रहे हैं, तीनों एक साथ। तो ये विशेषता है। इसलिए ये जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने नाम और प्रेम को एक माला में बांध दिया, अब नाम और प्रेम में कोई अंतर नहीं रह गया, प्रेम ही नाम है और नाम ही प्रेम है। तो ये इतना विशेष है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको साधारण नहीं समझना, ये साक्षात प्रेम का एक शाब्दिक रूप है। यू नो, भगवान के कृष्ण प्रेम को, राधा रानी के मालाना के महाभाव को शाब्दिक रूप में कोडेड कर दिया जाए तो वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना महत्वपूर्ण है ये, समझ आया? ये है प्रेम नाम, इसके पीछे इतना गहरा सिद्धांत है जो कि राधा हमें, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका आस्वादन भी कर रहे हैं, इसको बांट भी रहे हैं और साथ साथ में स्वयं इस प्रेम नाम के द्वारा उनकी अर्चना भी, उनकी पूजा भी की जा रही है। तो वास्तव में ये हरे नाम संकीर्तन आंदोलन इतना इसमें शक्ति है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये किसी को भी सिद्धि की तरफ खींच लेगा ना, किसी को भी, अगर किसी की इच्छा नहीं भी है, हम देखते हैं वो परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएगा। इतना पावरफुल आंदोलन है और इसमें कोई भी जुड़ता है, हम देखते हैं कि शुरू शुरू में हमें मालूम नहीं होता है क्या हो रहा है, लेकिन हम कैसे, है ना, वी हैव बीन चीटेड बाय कृष्ण किस ढंग से। एक बार बताते हैं कि फ्लोरिडा में एक यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी भी प्रतिदिन खिचड़ी बांटी जाती है, भक्त लोग आते हैं खिचड़ी बांटते हैं और साथ साथ में कीर्तन चलता रहता है और साथ में एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट सा, और जिसको जो आना है अपनी इच्छा से मांगते नहीं है, भक्त लोग जिसको जाना है डोनेशन बॉक्स में डालते रहते हैं। तो एक व्यक्ति था, बोले खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा वातावरण है, खानी चाहिए खिचड़ी, लेकिन डोनेशन इच्छा नहीं है। तो बोले पता नहीं कोई देगा नहीं देगा, कोई पकड़ ना ले, बेइज्जती ना कर दे, तो क्या करना चाहिए? तो बोले ठीक है खिचड़ी तो खाता हूँ, क्या करूँगा? तो उसने क्या किया, अपनी जेब से बस की टिकट होती थी, सिनेमा की टिकट होती थी, कुछ ना कुछ डालता था कि दूर से लगे कि कुछ डाल रहा है, डोनेशन दे रहा है। तो अपना बस की टिकट सिनेमा की कागज करके डालता था, बढ़िया खिचड़ी खाता था। तो रोज ऐसा करता था, करता गया। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने के बाद एक वक्त ने बुलाया उसको, बोले आपसे थोड़ी बात करनी है। तो वो सोचा होगा यार पता नहीं पकड़ा गया क्या हो गया, बड़ी बेइज्जती हुआ, पकड़ लिया उसने रंगे हाथ, हो गया काम। वहां गया, हाँ जी बोलो। बोला आप, मैं देख रहा हूँ आप काफी अब दिनों से आ रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ, घबराता जा रहा था पकड़ा जाएगा। बोले आप इसका मतलब कितने सिंसियर हैं आप, आप प्रतिदिन आते हैं, कितनी अच्छी बात है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी और जिम्मेवारी लीजिए। बोले क्या करना होगा? बोले थोड़ा सब्जी कटवा दिया कीजिए, थोड़ा अंदर रखे ना, सब्जी काटनी होती है। बोले ठीक है आ जाऊंगा। तो फिर क्या होगा, उसको पता भी नहीं चला, पहले चोरी चोरी खिचड़ी खाता था, वो सब्जी काटने लगा। थोड़े देर के वो सब्जी बड़ी अच्छी काटते हैं, बड़े सिंसियर हैं, तो थोड़ा बनाने में मदद कीजिए। तो वो कुकिंग में चला गया और फिर कुकिंग करते और उसको आनंद आया, वो देर क्या फुल टाइम दीपकती बन गया। तो ये है, ये इस ढंग से ये हरिनाम जो संकीर्तन आंदोलन सक कर लेता है एकदम, किसी भी इंटेंशन से कोई आएगा। किसी भी इंटेंशन से, हम सबके साथ ही तो ये होता है, हम में से जो भक्त आते हैं, आप में से जो आए थे, आप में से कितने भक्तों ने सोचा था कि वो प्रतिदिन 16 माला का जप करेंगे? संभव ही नहीं है। कितने भक्तों ने सोचा था कि मैं धोती डाल के सड़कों पे नाचूंगा? सोचा था किसने? नथिंग। आज यहाँ पे इतने भक्तों ने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग किया, ये एमटेक हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर में, उनकी हालत देखो, ऊपर आके किचन में सब्जी बना रहे हैं। अजीब सी बात नहीं है ये? पीएचडी, एमटेक, सब आके सड़कों पे भिखारियों की तरह गीता बेच रहे हैं ये सब। और जो पहले गीता लेता है बड़े कार से स्टाइल से देता है 500 रुपए, कुछ टाइम के बाद उसने 500 रुपए टिप दिया, बाद में वो मांग रहा होता है। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये बहुत विशेष आंदोलन है, बहुत विशेष आंदोलन है। ये इतनी कृपा बरस रही है, हम जान नहीं पा रहे हैं। ये तो इस तरह है कि हम इतने रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, नहीं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तब जाके ये हालत है। इसलिए तो माँ कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि जो इसमें नहीं डूबेगा उसके कोटि कल्प तक, कई करोड़ों कल्पों तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। ना कि जहां इतनी बाढ़ आ रही है फिर भी व्यक्ति अपने को सूखा रखे, तो मतलब कि बहुत बहुत ही जिद्दी है, तो उसी की हालत होगी। तो अब हमने देखा कि ये महाप्रभु ने हमें प्रेम नाम का प्रेम दिया और फिर नाम का हमें उपहार दिया। तो इस नाम के उपहार को कैसे हैंडल करना है ये हम अगले उसमें बताएंगे। अब तीसरा है, क्या दिया था उपहार? वृंदावन। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये 500वां साल है जब महाप्रभु वृंदावन में गए थे, है ना। और महाप्रभु जब वृंदावन जाते थे भक्तों से बहुत रिक्वेस्ट करके, ये एक अलग लीला है, 17वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, अब इतना हमारे पास समय नहीं है। लेकिन महाप्रभु का विशेष योगदान रहा जब महाप्रभु घूमते घूमते अरिड ग्राम गए, है ना। महाप्रभु ने स्वयं राधा कुंड और श्याम कुंड को ढूंढ कर निकाला। तो अरिड ग्राम बेसिकली, अब उसको अरिड ग्राम कहते थे, लेकिन वो था वो अरिष्टा ग्राम जहाँ पे अरिष्टासुर का वध हुआ था। तो वहां महाप्रभु ने जाकर लोगों से पूछा कि यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पे है, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी है, राधा कुंड और राधा रानी में अंतर ही नहीं है। तो लोग बोले कौन सा राधा कुंड श्याम कुंड, मालूम ही नहीं। महाप्रभु पहचान के, वहां भी कुछ चार धान के खेत थे और दो छोटे छोटे ऐसे पौंड बने हुए थे, महाप्रभु ने देख लिया ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। और महाप्रभु बड़े भावेश में आके उसमें नहाने लगे और आसपास के जो गांव वाले थे बड़े हैरान हो गए कि ये इसमें कौन नहा रहे, धान के खेत में कोई नहा रहे हैं। फिर महाप्रभु ने बोला ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। और फिर राधा कुंड की महिमा ने महाप्रभु ने वहां पे कुछ श्लोकों का उच्चारण किया। तो राधा कुंड की, तो इस ढंग से ये महाप्रभु का विशेष योगदान है। और फिर महाप्रभु ने अपने षट गोस्वामियों को भेजा कि जाइए आप वृंदावन की महिमा को द्वारा से स्थापित कीजिए। उससे पहले लोकनाथ गोस्वामी जी को और भूगर्भ गोस्वामी जी को भेजा। और हम देखते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो कि प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, सब कुछ छोड़कर आए महाप्रभु से मिले और महाप्रभु ने बोला जाओ वृंदावन में। और उसमें वृंदावन में कोई धर्मशाला नहीं थी, कोई गेस्ट हाउस नहीं था, गीजर उपलब्ध नहीं था या एयर कंडीशन उपलब्ध नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल। और उसमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी आए, केवल एक बारी वो वृंदावन से बाहर निकले, जगन्नाथपुरी में आए, उसके बाद दोबारा वृंदावन से बाहर नहीं निकले। कहने का अर्थ है कि वृंदावन हमें जाना चाहिए केवल सेवा की भावना से, है ना।
शिला प्रभुपाद वृंदावन में गए कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं, सेवा की भावना से। राधा दामोदर मंदिर में बैठ के वृंदावन में प्रभुपाद जी प्लानिंग कर रहे थे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, जिससे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से पूरे विश्व में वृंदावन की महिमा को स्थापित किया है। शिला प्रभुपाद जी वृद्ध अवस्था में पूरे विश्व में 14 बारी उन्होंने भ्रमण किया और वृंदावन की महिमा को स्थापित किया। तो ये महाप्रभु का विशेष योगदान है। महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा कि आपके वृंदावन में जो अलग अलग लीला स्थली हैं और अलग अलग मंदिरों को उन्होंने वहां पे स्थापित किया। फिर चौथा योगदान जो उन्होंने राधा रानी की महिमा, जो कि हमने पहले प्रेम नाम में उसकी चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो चार महान उपहार हमें प्राप्त हुए हैं, इसको हम कैसे इसको हमें हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, ये जो उपहार हमें प्राप्त हुए, ये स्वयं कितने यहां बैठे भक्तों को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिए उपहार। किसी को दिया? कैसे उपहार हमें प्राप्त हुए? ये भक्तों के माध्यम से, है ना। तो हमें जब ये उपहार मिले हैं और चैतन्य महाप्रभु आए आज से 520 वर्ष पूर्व और अभी तक इसको संभाल के रखा गया, इसका मतलब ये जानते ही हमें कितने हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए पूरे पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति, जिन्होंने इन उपहारों को संभाल के रखा यथा रूप। कितना संघर्ष करना पड़ा इन उपहारों को बनाए रखने में, बहुत संघर्ष था। हम जितने भी पूर्ववर्ती आचार्यों की गाथाएं पढ़ते हैं, उनको यही संघर्ष करना पड़ा कि इसकी प्योरिटी को, इसकी शुद्धता को वो मेंटेन कर सके। कितनी अपसंप्रदाय आए, कितने तरह के डेविएशंस आए, उन सब से इनको बचा के रखा। और फिर जो वर्तमान भक्तवृंद हैं जिनके माध्यम से हमें उपहार प्राप्त हुए, तुम्हारे हृदय में बहुत कृतज्ञता और आदर और प्रेम हमें रहना चाहिए और इन उपहारों की महिमा को हमेशा हमें स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमें इतने ऊंचे विषय के बारे में बताया गया, हम इतना ऊंचा हमें प्रेम नाम प्राप्त हो रहा है। जो प्रेम नाम, जो प्रेम ब्रह्मा जी और शिव जी को प्राप्त नहीं होता, वो हमें प्राप्त हो रहा है। ये इसकी महिमा है, इसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए और पूरी कृतज्ञता के साथ। अब जैसे प्रेम, हमें प्रेम कैसे प्राप्त हुआ है? हम में से किसी को प्रेम प्राप्त हुआ है? आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं प्रेम नाम उपहार, प्रेम उपहार, मुझे तो मिला नहीं प्रेम अभी तक। ये उपहार मिला हमें से किसी को प्रेम? तो उपहार पहुंचा नहीं अभी तक है? तो तभी तो कृतज्ञता कैसे आएगी, मिला ही नहीं अभी तक। है, अभी भी प्रेम है हमारे पास। वो जो प्रेम है अभी बीज के रूप में है, वो है भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रेम दिया है, हमारे तक प्रेम पहुंचाया है। ये बता रहे कि जीवन प्रेमो पुमार्थो महान, जीवन का लक्ष्य है प्रेम करना और उस प्रेम पाने की पूरी विधि बताई है। इस श्रद्धा से प्रेम तक कैसे पहुंचाना है, पूरा हमें गाइड मैप दिया है। तो उस मैप के अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो हमें जो भक्ति लता बीज प्राप्त हुई है, इसको बहुत सही तरीके से स्वीकार करना चाहिए। भक्ति लता बीज का अर्थ शिला प्रभुपाद जाते हैं चैतन्य चैतन्यमृत में, ऐसे मेथड्स, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसके द्वारा हम अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। तो ये है भक्ति लता बीज, यानी कि हम सबको प्राप्त हुआ है। सारे मेथड्स हमें मालूम है, क्या श्रवण करना है, कीर्तन करना है, अध्ययन करना है, अर्चन करना है, सब विधियां हमें मालूम है। इसका हमें पालन करना है, इसको बहुत गंभीरता से लेना है। अभी पीछे हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु कृपा बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हमें केवल सिंसियर और सीरियस होना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद भी अक्सर ये लिखते हैं कि इस आंदोलन में केवल आप सिंसियर और सीरियस हो जाएं, आपको कृपा मिल जाएगी। तो गुरु प्रसाद महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि सिंसियर और सीरियस का मतलब क्या है, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। तो गुरु प्रसाद महाराज ने बोला कि सिंसियर का अर्थ है कि हम बहुत ध्यानपूर्वक सुने, उस पर मनन करें और फिर सीरियस होकर उसको एग्जीक्यूट करें। वी शुड बी वेरी सिंसियर इन हियरिंग एंड थिंकिंग एंड वेरी सीरियस इन एग्जीक्यूटिंग। जो हम सुन रहे हैं उसको सुने अच्छे ढंग से, उस पर मनन करें और फिर बड़ी गंभीरता से उसको पालन करने का प्रयास करें। अगर आजीवन हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें कृपा मिलेगी। हम देखते हैं कि जब भक्ति में प्रारंभ की अवस्था में आते हैं तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, फटाफट छक 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 छक, और ऐसा लगता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, एकदम मृदंग वाद्य सुनी दे मन सुनी तो ही चाहिए आचे, एकदम मृदंग सुनते ही नाचने की इच्छा होती है। भक्तों के एक क्षण की क्लास मिस ना हो जाए बड़ा दुख होता है, क्यों, हम सुनते हैं जीवन में उतारते हैं तो कृपा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है। हम अपने जीवन में ये सेपरेशन का मूड कैसे ला सकते हैं, जैसे बोले कृष्ण बता रहे थे कि हमें सेपरेशन का मूड लाना चाहिए, तो हमें तो लगा ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, मादा ना क्या महाभाव तो पता नहीं क्या है, लेकिन हमारी अवस्था में सेपरेशन का मूड क्या है, सचिंद्र स्वामी महाराज बता रहे थे कि हमें भी जो जप करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए सेपरेशन के मूड में, कैसे कि मैं बहुत पतित अवस्था में हूँ, भगवान आप ऊंच बहुत उत्तम अवस्था में हैं, मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, आप तो आ सकते हैं, प्लीज पिक मी अप, कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे बचाइए, है ना। और फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में मुझे जो आनंद मिला था, आप में से कितने भक्तों को लगता है कि आनंद बढ़ता जा रहा है, जो पहले वाला आनंद था लगता है अभी है, होप है, लेकिन जो वो पहले रोमांच होता था भक्तों को देखकर, विग्रह को देखकर, कीर्तन सुनकर, अध्ययन करके, श्रवण करके, सब कुछ नया नया फ्रेश प्रसाद पाके, हमें याद है जब आते थे ऑफिस से आते थे ठंडी खिचड़ी भी खाने को मिलती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे, ये नहीं कि खराब है बड़ी अच्छी है, प्रेम अश्रु निकलते थे, कोई भी अगर कोई बोल भी दे कि प्रसाद है तो घर में खाना नहीं खाएंगे, चाहे ठंडा कैसा भी हो, कभी लगता नहीं था मिर्च ज्यादा है नमक कम, कुछ भी नहीं लगता था, आप वही प्रसाद आते हैं बोलेंगे ये कम है वो ज्यादा है, रोज वही बनाते हो भाई, है ना, तो क्यों क्यों नहीं हम देख पा रहे दिव्यता, हम दिव्य दृष्टि कहां चली जाती है, तो ये सेपरेशन हमें महसूस करना चाहिए, वो कोई तुक्का नहीं था, वो कोई सपना नहीं था, वो भगवान ने हमें एक एक्सटेसी का सैंपल दिया था, ये लो छन करके फिर खींच लिया, जैसे नारद मुनि का आता है, नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए फिर अपने आप प्रकट कर लिया, फिर भविष्य फिर आकाशवाणी की अपने आप को शुद्ध करो, उसके बाद नारद मुनि ने ये नहीं बोला कि मैं डिप्रेस होकर बैठ गया, क्या है सब ऐसे ही है धोखेबाजी है भगवान भी धोखा देते हैं, है ना, ऐसा नहीं, नारद मुनि बोल रहे हैं उसके बाद मैं निरंतर नाम लेता रहता था और विमाद और विमत्सर होकर सबको मान देता था और ईर्ष्या रहित होकर मैं निरंतर नाम लेता था और जगह जगह भ्रमण करता था, ये करते 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 वो सिद्धि को प्राप्त हुए, तो हमें वो स्मरण करना चाहिए, ये जो प्रारंभिक अवस्था में हमें जो आनंद मिला था ये आनंद हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, हमें लगता है नहीं अब हमें मालूम चला कि सच्चाई क्या है ना, जो लोग इतने दिव्य लिखते थे वो दिव्य है नहीं, हमारी प्रोसेस प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब कहने की बात है, अब हमें लगता है कि हमें अंदर की बातें मालूम चल गई हैं, ये भौतिक दृष्टिकोण है देखने का, हमें ये नहीं सोचना कि वो माया था ये सच्चाई है, नहीं ये माया है वो सच्चाई थी, इसके लिए हमें हैंकर करना चाहिए, इसके लिए हमें और प्रेरित होना चाहिए, जितना हम हैंकर करेंगे उतनी हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना जल्दी हम विकसित होंगे, इसको प्लीज गंभीरता से हमें लेना है, ये कैसे प्रेम का जो मैं उपहार हुआ उसको कैसे हैंडल करना, ये हम ये चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है हमारे साथ, कितने भक्त आते हैं चले जाते हैं उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, इसलिए प्रेम के उपहार को हैंडल करना है। दूसरा क्या था, नाम, नाम के उपहार को कैसे हैंडल करना है कि पांच मिनट रुक जाए बस, मैं अभी वाइंड अप कर लूं क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया तो गड़बड़ होगी तो नाम के उपहार को बहुत हमें ध्यानपूर्वक जप करना है, इस मूड ऑफ सेपरेशन में चैंटिंग करने का प्रयास करें, कई बड़े भ्रम हैं ऐसे कि राधे राधे का नाम लेना ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा हमें जल्दी जल्दी प्रणाम मिल जाएगा, तो एक बार 1937 में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ जाते थे, सॉरी 1937 नहीं उससे पहले 36 में तो उनका तिरुभाव हो गया था, तो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ जहाँ भी जाते थे राधा कुंड में जाकर उन्होंने उपनिषदों पर चर्चा शुरू कर दी, तो कुछ भक्त उनके पास गए बोले कि आपका एक डिसाइपल है राधा कुंड में रहता है, उसने उपदेशामृत पढ़ी और राधा कुंड में रहना शुरू कर दिया और उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप बंद कर दिया है, अब पूरा दिन राधे राधे करता रहता है, तो भक्त पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, कई पुराणों में राधा राम की महिमा बताई गई है, राधा शब्द कहते ही मतलब कि कृष्ण पीछे पीछे भागते हैं, तो बोलना चाहिए राधे राधे। तो जैसे आप राधा बोलोगे, रास सुनते ही कृष्ण यूं हो जाते हैं और धा सुनते ही भागना शुरू कर देते हैं जिसने राधा नाम लिया। तो आप चाहेंगे कृष्ण आपके पीछे पीछे भागे, कितने अच्छी बात है। तो बोले ये भी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति सांस ठाकुर ने बोला कि हमारे पास एक और अच्छा प्रोग्राम है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो क्या है, राधा रानी ऐसे पीछे भागती है और हम लोग राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के नहीं। राधा दास्यम, ये है असली मंजरी भाव, ये है गौड़िया वैष्णव का सर्वोत्तम सिद्धांत। क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो हम भी कृष्ण को जब पुकारेंगे तो राधा रानी हमारे पीछे भागेंगे और कृष्ण का नाम सुन के राधा रानी को आनंद मिलता है। तो हम सब गौड़िया वैष्णव का मुख्य सिद्धांत क्या है कि हमने राधा रानी को प्रसन्न करना है, वो वृंदावनेश्वरी है, समझे। तो ये नाम को हैंडल करना है कैसे, बहुत ही ध्यान पूर्वक। ये बहुत सुंदर उपहार है। और जस्ट गिव मी 5 मिनट्स प्लीज, सॉरी। और तीसरा उपहार क्या मिला हमें, वृंदावन, है ना। वृंदावन का उपहार कैसे करना है, इसमें आप प्लीज दूसरे अध्याय स्कंद का है, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय है और श्लोक संख्या 22। इसमें आप अंत के तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि वृंदावन कैसे जाना चाहिए, वृंदावन को कैसे हैंडल करना है। केवल 2 लाइनें हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं यह मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों या मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से ना करे, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करे। सैर सपाटे के लिए नहीं जाना, किसी जानकार भक्त के निर्देशन में जाना है। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतः यह उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दी है। इतना स्ट्रांग लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वृंदावन में घूमने फिरने नहीं जाना, और वृंदावन में जाना गुरु के आदेश से। ऐसे ही चले गए तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसका चलना वो क्या है, जड़ वृक्ष के समान है। ये वृंदावन को, मायापुर को इस ढंग से हैंडल करना है, घूमने फिरने के लिए नहीं, और सेवा की भावना से। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी गोस्वामी वहां सेवा की भावना से गए हैं, केवल रिलैक्स करने या हॉलिडे ब्रेक के लिए नहीं गए हैं, है ना। सेवा होनी चाहिए वहां पे, इंडिपेंडेंटली नहीं जाना। और चौथा कैसे उपहार है, राधा रानी के नाम का उपहार हमने आपको बताया। अब हमारा अंतिम वादा है कि बर्थडे गिफ्ट हमें क्या देना है गौरांग महाप्रभु को, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। अगर हम कोई अपने प्रिय व्यक्ति को बर्थडे गिफ्ट ना दें तो कैसा लगता है, प्रभु जी अपनी धर्म पत्नी को बर्थडे गिफ्ट ना दें तो कैसा लगेगा माता जी लोगों का, है ना। एक बड़े सीनियर विवाहित व्यक्ति ने एक नए नए विवाहित व्यक्ति को सलाह दी कि प्रभु कभी भी अपने वाइफ का बर्थडे मत भूलना। तो बोले कैसे याद रखो, बोले बस एक बार ही भूल जाना फिर कभी नहीं भूलोगे तो लेकिन हमने गौरांग महाप्रभु का बर्थडे कभी भी नहीं भूलना। अगर हम किसी अपने प्रिय के बर्थडे को भूलते हैं, हम ये शो करते हैं कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, है ना। मतलब कि या फिर एक हस्बैंड वाइफ को या एक मित्र को जान के बर्थडे गिफ्ट नहीं देता क्योंकि बेचारा पछता रहा होता है कि मेरी चॉइस गलत थी, है ना, पहले मैं फंसा हुआ हूँ, बर्थडे गिफ्ट दूं ऊपर से। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है गौरांग महाप्रभु की शरण में मैं गलत फंस गया तो ठीक है, वो गिफ्ट ना दे। या फिर वो गौरांग महाप्रभु को यह महसूस कराना चाहता है कि यू डोंट हैव सो मच इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के अंदर भी संवेदना है, भगवान एक संवेदनशील व्यक्ति है ना, हरि नाम भी एक संवेदनशील है, उनको वैसे डील करना है। तो आज के दिन हम गौरांग महाप्रभु को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, वो तो सब कुछ है उनके पास, क्या दे सकते हैं सोचिए। ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, सोचना पड़ेगा। पद छोड़ना आसान है, है ना, लेकिन अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है, है ना। रूप और सनातन गोस्वामी जी ने पद भी छोड़ा साथ में मिथ्या अहंकार भी छोड़ा। प्रभाव उदाहरण देते हैं सी आर दास का, जो कि अंग्रेजी शासन में बैरिस्टर था, गांधी जी के आंदोलन में सेंटिमेंटल होकर उसने भी नौकरी छोड़ दी, पद छोड़ दिया, लेकिन मिथ्या अहंकार नहीं छोड़ पाया, डिप्रेशन में चला गया, कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। तो हम पद छोड़ देते हैं, बाहरी दृष्टि से हम त्याग करते हैं, अंतरूढ़ दृष्टि से नहीं। तो आज के दिन हम अपने अपने स्तर पे कुछ मनन कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें करें जिससे महाप्रभु प्रसन्न हो। कैसे हम महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? अभी पीछे गुरुप्रसाद महाराज आए थे, उन्होंने बोला था कि महाप्रभु एंजॉयज द ऑस्टेरिटीज ऑफ द डिवोटीज एज अ फीस्ट। जो भक्त लोग तपस्या करते हैं वो महाप्रभु के लिए फीस्ट है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा। तो मैंने बोला कि क्या समझाओ जरा, तो गुरुप्रसाद महाराज ने बताया भक्तों की तपस्या का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना। बस थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करें, आंतरिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से, अपने मन के संघर्ष, भक्तों के बारे में गलत सोचना, गलत धारणाएं रखना, द्वंद में फंस जाना। कुछ हम सोच सकते हैं, कुछ संकल्प लें, कुछ अनुकूल करने का अपने जीवन में उतारने का, कुछ प्रतिकूल त्यागने का, इस पर कुछ सोच सकते हैं। शाम तक का समय, कल जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल है, कल तक भी उपहार दे सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, कई मेरे डर लगता है एक बार कमिट कर दिया नहीं कर पाया तो इसको सीरियसली लेकर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, कुछ छोटा सा उपहार देने का प्रयास करें। द्रव्य तो देते हैं, फल फूल वगैरह लाते हैं, धन भी देते हैं, तन भी देते हैं, कुछ अपने अहंकार और मन के स्तर का कुछ देने का प्रयास करें, अपना कुछ समर्पण करने का प्रयास करें, तो ये महाप्रभु को बहुत प्रसन्न करेगा। तो हम प्रार्थना करते हैं हृदय से नित्यानंद प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, कि हम गौरांग महाप्रभु के देवी उपहारों की महिमा को समझ सकें, प्रेम नाम वृंदावन और श्रीमती राधा रानी की महिमा को जान सकें। इसको स्वीकार करके हम महाप्रभु के आंदोलन में कुछ समर्पित कर सकें। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।